प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए आज के प्रवचन को आरम्भ करें।
हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है मित्र, आप प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज के इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से आमोस नबी की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर न्यायोचित दंड देता है। परमेश्वर का दंड न्यायोचित होता है। आज हम इसके तीसरे अध्याय को आरंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, आप जो धर्मी और न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया कि हम एक बार पुनः आपके विषय में आपके वचन को सुन सकें और आपके विषय में प्रभु और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि हमारे श्रोता भाई बहन इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक आपको पहचाने, जाने, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने उद्धारकर्ता को और अपने जीवनदाता परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उसकी उपासना करें। आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु जी आप दूर कर दें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों में हम पुराने नियम से आमोस नबी की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके तीसरे अध्याय को लेंगे और तीसरे अध्याय का शीर्षक है इसराइल के संपूर्ण घराने के विरुद्ध परमेश्वर का आरोप। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इसराइल के संपूर्ण घराने को दंड देने की घोषणा करता है। स्वाई हमारे साथ देखिए आमोस नबी की पुस्तक जो पुराने नियम में है उसका तीसरा अध्याय 1-8 पद। आमोस तीसरा अध्याय 1-8 पद, जहां इस प्रकार से वर्णन है, हे इसराइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे अर्थात उस संपूर्ण कुल के विरुद्ध कहा है जिसे वह मिस्र देश से निकाल लाया। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अधर्म के लिए तुम्हें दंड दूंगा। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? क्या सिंह जंगल में शिकार पाए बिना दहाड़ता है? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े मांद में घुर्राता है? क्या भूमि पर बिछाए फंदे में बिना चारा लगाए चिड़िया फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे जाल भूमि पर से उचकेगा? यदि नगर में नरसिंगा फूंका जाए तो क्या लोग ना थर्राएंगे? क्या यहोवा के द्वारा भेजे बिना किसी नगर में विपत्ति पड़ेगी? निसंदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता, तब तक वह कुछ भी नहीं करता। सिंह गरजा तो कौन न डरेगा, प्रभु यहोवा बोला तो कौन नबुवत ना करेगा। मैंने आपके समक्ष 1 से 8 पदों को पढ़ा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। हमने प्रथम पद में आपके लिए पढ़ा, हे इसराइलियो, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे अर्थात उस संपूर्ण कुल के विरुद्ध कहा है जिसे वह मिस्र देश से निकाल लाया। अब यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता संपूर्ण इसराइलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे इसराइलियो, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे अर्थात उस संपूर्ण कुल के विरुद्ध कहा है। अब ये महत्वपूर्ण बात है, यहां परमेश्वर पिताजी संपूर्ण कुल को संबोधित कर रहे हैं और ये बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर पिता की दृष्टि में इसराइल एक ही राष्ट्र है। यहूदा जो दक्षिणी राज्य है तथा इसराइल जो उत्तरी राज्य है एक ही कुल है जिसे परमेश्वर पिता मिस्र से निकाल कर लाए थे, क्योंकि इनका मूल पिता प्रभु का दास इब्राहिम है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस कुल को इस पृथ्वी पर ठहराया, इसको तैयार किया। जैसा कि हमने अभी प्रथम पद में देखा, हे इसराइलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे अर्थात उस संपूर्ण कुल के विरुद्ध कहा है। ये कौन सा कुल है जिसे वह मिस्र देश से निकाल लाया? तब दूसरे पद में प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अधर्म के लिए तुम्हें दंड दूंगा। अब ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पद के दो भाग हैं। पहला भाग है पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, और उसका दूसरा भाग है इसलिए मैं तुम्हारे सारे अधर्म के लिए तुम्हें दंड दूंगा। वास्तव में जल प्रलय द्वारा दंड के पश्चात भी मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था। इस दंड को भोगने के पश्चात भी मनुष्य के जीवन के भीतर से पाप नहीं गया था, क्योंकि मनुष्य का जीवन पाप में जीवन हो गया था। हमारे मूल पिता आदम और हव्वा के पाप के कारण मनुष्य की रगों में पाप समा गया, उसके रक्त में पाप समा गया, और इसलिए दंड के पश्चात भी मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था। बेबीलोन की मीनार परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के विद्रोह का एक उदाहरण है। ये मीनार परमेश्वर से मनुष्य के भटक जाने का ज्वलंत उदाहरण है। परमेश्वर पिता ने सृष्टि की गतिविधियों और वस्तुओं द्वारा स्वयं को मनुष्य पर प्रकट किया, किंतु मनुष्य सृष्टि की ही उपासना करने लगा। वो सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की उपासना में लग गया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो विशेष प्रतिभाशाली मनुष्यों की उपासना में लग गया। जब उसका मन और अंधकार में हो गया तो भयानक हानिकारक या लाभकारी जीवों की उपासना करने लगा। फिर भी संतुष्ट ना हुआ और उसका निर्बुद्धि मन पूर्णतः अंधकारमय हो गया तो स्वयं अपने हाथों से अपने अपने ईश्वर का ढाले और उनकी उपासना में लग गया। बेबीलोन की मीनार पूर्णतः धर्म त्याग का प्रमाण है। और तब परमेश्वर कसदियों के उर नामक स्थान पर स्वयं पहुंच गया और उसने देखा कि समस्त पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिमाओं पर विश्वास नहीं रखता, उसे अपने सृष्टिकर्ता की तलाश है, वह अपने सृष्टिकर्ता की खोज में है और उसका मन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर सीधा है। परमेश्वर ने स्वयं को उस सच्चे खोजी पर प्रकट किया और उससे कहा, उठ, इस प्रतिमा पूजक देश से निकल जा और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जानते हैं वह व्यक्ति कौन था, ये सच्चा खोजी कौन था? वे थे प्रभु के मित्र विश्वासियों के पिता अब्राहम, और इसराइली उसी प्रभु के सेवक अब्राहम के वंशज हैं। इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि पृथ्वी के सब कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया। ये विशेष अधिकार केवल इसराइल जाति को प्राप्त है। परमेश्वर ने उन पर अपना मन लगाया है। परमेश्वर ने जाति को इसलिए चुना कि वे संसार तक उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर का संदेश पहुंचाएं। आज परमेश्वर पिता ने मुझे और असंख्य मसीही विश्वासियों को इस उद्देश्य से चुना है कि जीवित व सच्चे परमेश्वर का संदेश इस संसार तक पहुंचा दें। परमेश्वर के स्वभाव के विषय में, परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में, परमेश्वर के तरस, परमेश्वर की दया करुणा के विषय में, साथ ही परमेश्वर के न्याय और दंड के विषय में भी इस संसार को बता दें। मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में उद्धार का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने वास्तव में मोक्ष का अनुभव प्राप्त किया है, अपने घर में शांत नहीं बैठ सकता, वह चुप नहीं रह सकता, वह इस मोक्ष अर्थात उद्धार की चर्चा दूसरों से अवश्य करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो हम उसके उद्धार के सामने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। मेरे मित्र, इसी उद्देश्य से मैं भी कॉलेज का अध्यापन कार्य त्याग कर परमेश्वर के वचन की सेवा में जुट गया, क्योंकि प्रत्येक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परमेश्वर के संदेश को संसार तक पहुंचाना ही है। ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसे एक विशेष अधिकार मिला है। अधिकार यह है कि वह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है, इसलिए उसके कर्तव्य भी महान हैं, बड़े हैं, उसका उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक है। इसलिए उसको परमेश्वर के संदेश को संसार तक पहुंचाना ही है। इसमें उसकी इच्छा और अनिच्छा का प्रश्न नहीं उठता। सुनिए परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अधर्म के लिए तुम्हें दंड दूंगा। श्रोता, जब विशेष अधिकार प्राप्त है तो विशेष कर्तव्य भी है। हमें कर्तव्य भी निभाना है। यदि अधिकार है तो कर्तव्य भी है। परमेश्वर पिता ने इसराइल को अपना दर्शन दिया, अनुभव दिया और अपनी व्यवस्था दी, उन्हें सच्चा धर्म दिया। आप चाहें तो हमारे साथ देख सकते हैं रोमियो की पत्री, उसका 9:4-5 यहां इसराइल के कुछ विशेष अधिकारों के विषय में चर्चा की गई है। यहां प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बताते हैं, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पूर्वज उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के अनुसार उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर युगानुयुग धन्य परमेश्वर है, आमीन। सो यहां प्रेरित पौलुस कुछ विशेष अधिकारों की चर्चा करते हैं जो इसराइल प्रजा को प्राप्त हैं। इसलिए उनका उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक हो गया। इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अधर्म के लिए तुम्हें दंड दूंगा। मित्रवर, जिन देशों ने दिव्य ज्योति प्राप्त की है, उनका उत्तरदायित्व उन देशों से अधिक हो जाता है जो अभी अंधकार ही में जी रहे हैं। परमेश्वर पिता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसराइल को उसके अधर्म के लिए दंड देना चाहते हैं। आज अधिकांश लोग परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, वे इससे आनंदित होते हैं। आप भी आनंदित हैं, मैं भी इस विषय से आनंदित हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम वास्तव में अद्भुत है। और हमने अपने बाइबल अध्ययन में इस पर विशेष बल भी दिया है। परमेश्वर का प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम विश्राम पाते और आनंदित रहते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को कलवरी के क्रूस पर प्रदर्शित किया। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्रूस वह स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, और जब वह प्रेम ठुकरा दिया जाता है, जब ऐसा महान प्रेम मनुष्य के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, तब दंड के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता। अनेक लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य को दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है, किंतु मेरा विचार है कि जब वे इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, इस ब्रह्मांड का संचालन उनके हाथ में नहीं है, तो उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं और उनका विचार स्वीकार करने के योग्य भी नहीं। पाप को दंड देना एक न्याय संगत परिणाम है। परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि वह पवित्र, धर्मी तथा न्यायी है, और इसलिए उसने पाप को दंडित करने का निश्चय कर लिया है। आमोस नबी यहां कुछ मूल सत्यों की भी चर्चा करता है। वह तकुआ के जंगलों से आया था, जैसे कि हमने आपको बताया, यही उसकी पृष्ठभूमि है। उसने वहां प्रकृति के साथ लंबा अनुभव प्राप्त किया था। उसने अपना पाठ इस प्राकृतिक संसार में सीखा था। वही उसकी कक्षा थी, वही उसकी प्रयोगशाला थी। उसने वहां कुछ ऐसी बातें सीख ली थीं जिन्हें अभी इसराइलियों को सीखने की आवश्यकता थी। हो सकता है कि बहुत से सभ्य देशों को, सभ्य लोगों को भी वे बातें सीखने की आवश्यकता है। कई बार नगरवासी अनेक साधारण ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो अंग्रेजी की गिनतियां तो सरलता से बोलते हैं, किंतु वे अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की गिनतियां नहीं बोल पाते। कई बार नगरवासी अनेक साधारण ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते हैं। हमारे एक मित्र ने हमें बताया कि उनकी पुत्री पहली बार स्कूल के बच्चों के साथ डेयरी फार्म अर्थात दुग्धशाला घूमने गई। वहां उसने सुंदर सुंदर गाय और उनके बछड़े देखे। वो देखकर बड़ी उत्तेजित हो गई और उसने घर आकर हमें बड़ी ही उत्तेजित करने वाली खबर सुनाई। और जानते हैं वो खबर क्या थी? वो खबर थी गाय में से दूध निकला। उस लड़की ने पहली बार देखा कि गाय में से दूध निकला। उसका विचार था कि दूध तो बाजार से आता है और वहीं उत्पन्न होता है। मित्रवर, ये व्यक्ति आमोस एक ग्रामीण व्यक्ति है और ऐसी बातें जानता है जो बेतेल नगरवासी नहीं जानते, जिन्हें अपनी सभ्यता पर गर्व है। उसने प्रकृति से उन बातों को सीखा है जो बेतेल नगरवासी नहीं जानते। आज अधिकांश नगरवासी ये नहीं जानते कि प्रातःकाल कैसा होता है, सूर्य उदय कैसा होता है। आप आमोस के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तीसरे पद को देखिए। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? ये आमोस का पहला प्रश्न है। क्या दो व्यक्ति साथ चल सकते हैं? हाँ, चल तो सकते हैं, किंतु वे साथ साथ जा नहीं सकते जब तक उनकी आपस में सहमति ना हो। मैंने एक बार एक नव दंपत्ति को सड़क पर हाथ में हाथ डाले साथ साथ घूमते देखा। एकाएक पत्नी ने अपने पैरों को सड़क पर जोर जोर से पटका, मानो सड़क पर मुहर लगाई हो, और तेजी से वापस लौट गई और पति अकेला आगे बढ़ गया। मित्रवर, वे फिर भविष्य में साथ नहीं चले क्योंकि उनकी आपस में सहमति नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से संबंध समाप्त कर दिया। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां हम कारण और परिणाम के सिद्धांत को देखते हैं। कारण, यदि आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो आपस में सहमति होना आवश्यक है। तब परिणाम के विषय में हम देखते हैं कि आप परमेश्वर के साथ तब ही चलेंगे जब उससे आप सहमत होंगे। इसका अर्थ ये कदाचित नहीं है कि परमेश्वर आपके स्तर पर आकर आपके साथ सहमत होंगे। आपको और मुझे परमेश्वर के पक्ष में जाकर उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। अंततः परमेश्वर इस संसार में अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। मित्रवर, परमेश्वर इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं और इसे चलाने का उनका अपना ढंग व कार्यक्रम है। वह इसे चलाने के लिए इस साधारण मानव से परामर्श नहीं करेगा। किंतु यदि मुझे या आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें उसी के ढंग से चलना होगा। हम स्मरण रखें, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हमें इस बात से सहमत होना पड़ेगा, हम अंधकार में जीवन व्यतीत करने के साथ साथ परमेश्वर के साथ किसी प्रकार की सहभागिता नहीं रख सकते। परमेश्वर ज्योति है तो हमें भी ज्योति में चलना पड़ेगा। परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं, हमें अंधकार को त्यागना पड़ेगा। हमें अंधकार के कार्यों को त्यागना होगा, तब ही हम परमेश्वर के साथ चल सकेंगे, सहभागिता कर सकेंगे। आमोस नबी ने अपने प्रथम प्रश्न में एक महान सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? अर्थात वे साथ साथ नहीं चल सकते। और अब है आमोस का दूसरा प्रश्न, चौथे पद को देखें। क्या सिंह जंगल में शिकार पाए बिना दहाड़ता है? मित्रवर, इसका उत्तर है नहीं। सिंह जंगल में शिकार पाए बिना नहीं दहाड़ता। शेर जब तक अपना शिकार पकड़ नहीं लेता, दबे पांव चुपचाप चोरी चोरी चलता है, और जब वह शिकार पकड़ लेता है तब आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। बिना शिकार पकड़े वह नहीं दहाड़ता। फिर अग्रिम प्रश्न है, क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े मांद में गुर्राता है? इसका अर्थ है किशोर सिंह अर्थात शावक बिना कुछ पाए गुफा में नहीं गुर्राता है। शावक गुफा में कोई आवाज नहीं करते क्योंकि उनकी मम्मी ने कहा है कि जब तक वह बाहर उनके भोजन का प्रबंध करने गई है और वापस नहीं लौटती, वे तनिक भी आवाज ना करें। परंतु जब वह वापस लौटती है और भोजन साथ लेकर आती है तब वे मांद में गुर्रा सकते हैं, किंतु उससे पूर्व वे नहीं गुर्रा सकते। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कारण और परिणाम साथ साथ चलते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का दंड मनुष्य के अधर्म के कारण आता है। परमेश्वर का दंड मनुष्य के अधर्म के कारण आता है, इस बात पर हमको ध्यान देना है। तब आमोस एक अन्य प्रश्न करता है, पांचवें पद में देखिए, क्या भूमि पर बिछाए फंदे में बिना चारा लगाए चिड़िया फंसेगी? मित्रवर, प्रकृति में सदैव कारण तथा परिणाम का सिद्धांत लागू होता है। यदि आपको चिड़िया पकड़नी है, कोई पक्षी पकड़ना है, तो आपको फंदा लगाना होगा, और जब चिड़िया फंसेगी तभी फंदा उछकेगा, और जब आप फंदा लगाते हैं तो आप उसमें कुछ पकड़ने की भी आशा करते हैं, और उसके जाल में कुछ ना फंसे तो वह व्यर्थ में फंदा लगाए नहीं रहता। जी हां मित्र, यदि आपके जाल में कुछ फंसता नहीं है तो आप व्यर्थ में फंदा नहीं लगाएंगे। छठे पद में लिखा है, यदि नगर में नरसिंगा फूंका जाए तो क्या लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के द्वारा भेजे बिना किसी नगर पर विपत्ति पड़ेगी? मित्र, यह हम पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर ने घोषणा की है कि वह लोगों को दंड देने जा रहा है। यहां पर हम दो विशेष बातों को पाते हैं। पहली बात कि परमेश्वर पिता ये घोषणा कर चुके हैं कि वह लोगों को दंड देने जा रहे हैं और दंड शीघ्र ही आने वाला है। यदि लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो यह उनकी मूर्खता होगी। ये दंड का उनके जीवन पर भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। ये दंड उनके जीवन के लिए भयंकर प्रमाणित हो सकता है, किंतु वे परमेश्वर के नबियों की सुनने को तैयार नहीं है। एक ओर परमेश्वर का दंड है, दूसरी ओर वे परमेश्वर के नबियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। भयंकर परिस्थिति है। तब दूसरी बात यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर की संतान के जीवन में विपत्ति का आना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। किसी भी परिणाम के लिए कारण की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता इस ब्रह्मांड का संचालन बिना उद्देश्य के मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब विपत्ति आती है तो हमें उससे सीखना चाहिए, हमें बैठकर मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे सीखने के लिए सबक होता है। सो मेरे मित्र, हमें परमेश्वर के वचन के महत्व को समझना है और इस बात पर विचार करना है कि हमारे जीवन में यदि कोई विपत्ति आई है तो उसका कोई कारण है, उसके पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य है, और हमको अपने जीवन में सदैव कारण और परिणाम के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अब इसी संदेश के साथ ही हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको सद्बुद्धि दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।